ओम शांति। इसी ट्रेनिंग के दौरान में आपको बहुत सी बातों पर स्पष्टीकरण मिला है, उसके अलावा भी उसके पहलू और हैं। मैंने आपको कहा था कि जो साथ हमारे टीचर्स रहते हैं उनके भी आपस में कुछ कभी कभी संस्कार और स्वभाव के कारण संघर्ष होते हैं। कई दफा स्टूडेंट्स भी निमित्त बनते हैं कि वो टीचर्स के बीच में आपस में कुछ फर्क पैदा करते हैं। कुछ और परिस्थितियां आती हैं, आपको बताया था कहीं पर संख्या की वृद्धि होती है, कहीं नहीं होती। जो भाषण आप करते हैं, जो क्लास आप कराते हैं और जो बातें होती हैं उसमें लोग संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, तो कई ऐसी बातें आती हैं जिससे चलते चलते योग में बाधा उपस्थित होती है। मन थोड़ा उदास हो जाता है, सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो उन बातों की भी हमने कहा था कि हम चर्चा करेंगे। फिर मुझे एक टॉपिक ये भी लिख कर दिया गया था कि बाबा से पूरा वर्षा कैसे लें। तो अब मैं ये सोच रहा था कि बाबा से पूरा वर्षा कैसे लें, ये टॉपिक लिया जाए। तो आप लोग क्या समझते हैं, कौन सा ज्यादा आपको जरूरी महसूस होता है? जो ये समझते हैं कि टीचर्स का जो आपस में संघर्ष चलता है, या स्टूडेंट्स या अन्य कारणों से जो परिस्थितियां आती हैं वो ज्यादा आपको जरूरी महसूस होता है आपके लिए, या बाबा से पूरा वर्षा कैसे लें वो ज्यादा जरूरी महसूस होता है? जिनको ये लगता है कि पहला टॉपिक ज्यादा जरूरी है वो हाथ खड़ा करें। जिनको ये लगता है कि बाबा से वर्षा लेने की बात को उठाएं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है, तो उस टॉपिक को हम लेते हैं। आप पूरा वर्षा लेना चाहते हैं, इसका मतलब यह है थोड़ा भी उसमें कुछ कमी नहीं रखना चाहते। वर्षा लेने में भी ये संघर्ष बीच में बाधा होता है, जो मैं रहे हुए पहलू की बात कह रहा था। वर्षा लेने में भी वो जो कमी पड़ जाती है, ये जो आपस के संघर्ष हैं यही बीच में रुकावट डालते हैं। ये स्वभाव और संस्कार के टकराव कुछ कम नहीं है। कुछ तो आप थोड़े अनुभवी होंगे जो सेंटर्स पर रहते होंगे, और आगे और हो जाएंगे। फिर आपको इस टॉपिक का महत्व तो शायद मालूम पड़ेगा। अभी आज कुछ कम लगता है, मालूम है आपको, कोई बात नहीं। अब जहां तक पूरा वर्षा लेने की बात है, आप ये देखिए कि अगर बाबा से वर्षा लेने की बात हो सिर्फ, तो ऐसे तो बाप से हर एक बच्चे को वर्षा मिलता ही है, हर कोई हकदार है। और आम तौर से कानून तो यही है कि बाप हर एक बच्चे को बराबर का वर्षा देता है। अगर नहीं देता है तो लोग भी उसको कहते हैं कि इस बच्चे को इसने कम दिया है। बच्चे की भी शिकायत रहती है उस पिता के प्रति, अगर वो उसको पूरा वर्षा ना दे, एक को अधिक दे दूसरे को कम दे, तो वो भी कहता है कि पिताजी का मेरे से प्यार कम है। यह आपको मालूम ही है। तो क्या सिर्फ बाप से वर्षे की बात है? केवल ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा समझते रहेंगे तो मेरे ख्याल में गफलत में रहेंगे, नुकसान कर बैठेंगे। सिर्फ बाप से वर्षे की बात नहीं है, ये बाप संसार के जो लौकिक पिता हैं उनसे अद्भुत है, न्यारे प्रकार का पिता है। ये सद्गुरु भी है, शिक्षक भी है। इसके तीनों पार्ट हैं, एक साथ तीनों पार्ट चलते हैं बहुत दफा। इसलिए वर्षा तीनों से लेना है। ये कहावत मशहूर है कि बाप से वर्षा मिलता है, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं कि सद्गुरु से भी वर्षा मिलता है। ये जो सन्यासी लोग हैं ये किससे वर्षा लेते हैं? जो इनका गुरु होता है उससे वर्षा लेते हैं। जो भी कुछ इनको मिलता है, जिस मुक्ति की ये कोशिश करते हैं, या जो महान बनने का यत्न करते हैं, ज्ञान की जो प्राप्ति या भक्ति में आगे बढ़ने का जो पुरुषार्थ करते हैं, वो समझते हैं कि गुरु कृपा से होता है, वो गुरु शिष्यों को देता है। ऐसे ही जो टीचर है, टीचर से भी वर्षा मिलता है। अगर आपको ये तीनों बातें ख्याल में रहेंगी तभी पूरा वर्षा ले पाएंगे, वरना पूरा वर्षा नहीं ले पाएंगे। सिर्फ अगर ये सोचेंगे कि बाप से वर्षा मिलता है तो फिर तीनों वर्षा नहीं ले पाएंगे। आपने देखा होगा कई ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार ज्ञान में ऐसे हैं जिनका जो वरिष्ठ बहन भाई हैं उनके साथ बड़ा नजदीक का संबंध है, उनके बड़े लाडले हैं और उन पर जिम्मेवारियां भी रखी जाती हैं, वो कार्य भी करते हैं, लेकिन योग लगाने में, मुरली पढ़ने में, अपना पुरुषार्थ करने में थोड़ा बहुत अन्य लोगों से वो कुछ मात्रा में कम ध्यान देते हैं। तो आप खुद ही महसूस करते होंगे कि फलां बहन या फलां भाई, फलां बड़ी बहन या फलां बड़े भाई के नजदीक हैं, लेकिन इनका जीवन तो कुछ और टाइप का है, ऐसा आपको देखने में आता होगा। तो आप क्या समझते हैं कि उनको पूरा वर्षा मिल जाएगा? पूरा वर्षा तो नहीं मिलेगा, बाप से तो मिल जाएगा क्योंकि वो कुमारियां और कुमार बन गए। बाप तो हर एक को वर्षा देने आया ही है, मुक्ति का वर्षा तो हर एक को मिल जाएगा, लेकिन जो जीवन मुक्ति रूपी वर्षा है वो तो नहीं मिलेगा सबको, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिल जाएगा। परम धाम में या ब्रह्मलोक में अपने उस पारलौकिक घर में लौटने की जहां तक बात है, वो तो बाबा ने सबसे वायदा किया हुआ है कि मैं आपको ले चलूंगा, शांति तो मिल जाएगी। और जैसे कैसे जो बाप के गुण हैं थोड़े बहुत वो भी आ जाएंगे, लेकिन बाकी जो सारी प्राप्तियां हैं वो तो नहीं होंगी। कई लोग आपने देखा होगा ज्ञान में बहुत तेज हैं, उनको को कल्प की आयु 5000 वर्ष है, वो समझाने में बहुत निपुण है। ये समझाना है गीता का भगवान कौन है, बड़ा जटिल विषय है, उसको वो सुगमता से समझा देंगे। कोई वाणी में से प्रश्न पूछो, उत्तर ठीक दे देंगे। भाषण करना हो बड़ा अच्छा करेंगे, लेकिन सहनशीलता नहीं है, सेंसिटिव हैं, थोड़ी थोड़ी बात में महसूस कर जाते हैं, रो पड़ते हैं, आपने देखा होगा। तो आपको आश्चर्य होता होगा कि अभी तो इस बहन ने सहनशीलता पर अच्छा भाषण किया था और इसमें स्वयं तो सहनशीलता है नहीं। तो आपने देखा होगा कि वो भाषण करने में तो प्रवीण है लेकिन वो गुण तो धारण हुआ नहीं। और दूसरों को कहेंगे सब सेवा करनी चाहिए, सेवा तो एक समान है, मार्क्स एक जैसे मिलते हैं। अगर उनको कहो कि आज आप जरा झाड़ू लगा दो और कोई नहीं है, तो समझेंगे मैं तो भाषण करने वाली बहन हूं, सीनियर बहन हूं, मैं क्यों झाड़ू लगा दूं, झाड़ू कोई दूसरा लगाए। अगर सब सेवा एक समान है और हमने तन मन धन से सेवा करनी है और हमको ये बताया जाता है कि साकार रूप में बाबा इतने वृद्ध होने के बावजूद भी वो शारीरिक रूप से भी सेवा करते थे और ये कहते थे कि मेरा तन भी सफल हो, ये भी सेवा में लगे, हड्डी हड्डी लगे दधीची ऋषि के समान, और ये तो कुछ स्थूल काम तो करने को तैयार नहीं है, ये समझती है कि ये घटिया काम है, और केवल भाषण करना, SML कोर्स कराना या योग शिविर कराना या शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन पर लेक्चर झाड़ देना, यही एक बहुत बड़ी सेवा है। कोई VIP आया उसको प्रदर्शनी दिखा देना, तो इसका भाव कुछ और है, तो वो धारण तो हुआ नहीं उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी पूरा वर्षा मिलेगा नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना इस बात को, वर्षा पूरा किसको मिलेगा? जो तीनों से पूरा वर्षा लेगा। अब तीनों से पूरा वर्षा किसको मिलेगा ये समझने की जरूरत है। लेकिन पहले पहले तो एक महत्वपूर्ण बात बुद्धि में अच्छी तरह से बिठा दीजिए कि सिर्फ बाप से वर्षा नहीं मिलेगा, बल्कि टीचर और सदगुरु से भी मिलेगा। इस पॉइंट को मिस नहीं करना, अगर इस पॉइंट को मिस किया तो नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि केवल बाप से नहीं मिलेगा, बाप दादा से मिलेगा। बाबा आमतौर से मुरली में कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा से आपको क्या मिलेगा, इसके पास है ही क्या, मैं क्या दूंगा आप बच्चों को, मुझे खुद ही शिव बाबा दे रहा है। तो बाबा तो अपने आप को गुप्त रखते हैं, छिपाते हैं, कभी भी बाबा अपनी महिमा तो करते नहीं, अपनी प्रत्यक्षता तो करते नहीं, और हमेशा शिव बाबा के गुण गाते हैं कि बच्चे योग उसे लगाओ, मुझे क्यों याद करते हो, मैं तो देहधारी हूं, मैं तो आपकी तरह से एक मनुष्य हूं, ऐसा कहते। लेकिन कुछ वर्षा ऐसा है जो ब्रह्मा बाबा से मिलेगा। बाबा तो वो भी है ना, शिव बाबा भी बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी बाबा है, तो बाप और दादा है, दादे से भी वर्षा मिलेगा, बाबा से भी वर्षा मिलेगा। तो ये बात भी मत भूलना, ये ना सोच लेना कि शिव बाबा से तो मेरा कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा से क्या है, वो भी तो एक मनुष्य था, ठीक है उसने अच्छा पुरुषार्थ कर लिया, वो नंबर वन में चला गया, लेकिन परमात्मा तो एक शिव ही है। परमात्मा एक शिव जरूर है, लेकिन क्या सारे कल्प में कोई और ऐसी आत्मा मनुष्य सृष्टि में है जो इतना समय तक अव्यक्त धाम में बाबा के अंग संग रहे? ये कम बात है। शिव बाबा जिसको अपने साथ रखे, हम लोग शिव बाबा को यहां याद करते हैं, और शिव बाबा उस ब्रह्मा बाबा को अपने साथ ही रखा हुआ है अव्यक्त धाम में। कितने वर्ष हो गए हैं, 1969 से लेकर और अभी 98 है, इतने वर्ष शिव बाबा के अंग संग कोई रहे, ये छोटी बात है? कौन किसको साथ रखता है? अगर कोई किसी को पसंद ना हो, किसी में कोई विशेषता और गुण ना हो, या कुछ अच्छे लक्षण ना हो, तो क्यों रखेगा? और वो भी शिव बाबा, जो संपूर्णता चाहता है, जो परफेक्ट है, वो उसको ही तो रखेगा जिसमें कुछ ऐसी सुगंधी होगी, जिसमें कुछ ऐसे गुण होंगे, ऐसे कर्तव्य होंगे, वो ऐसी विशेष आत्मा होगी। सारी आत्माओं में से एक ही आत्मा ऐसी है। आप देखिए, पुरुषार्थ तो हम लोग भी कर रहे हैं और बहन भाई भी कर रहे हैं, और किसी का ड्रामा में ये पार्ट तो है नहीं कि वो बाबा के अंग संग इतना समय तक रहे और वो अव्यक्त रूप बन के और सारी सृष्टि को ऊपर से वो लाइट और माइट का सकाश दे स्वयं भी, और जाके आत्माओं की जगह जगह पर सेवा करे। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसा भी योग कोई होता है जिससे कि किसी को ऐसी भी सिद्धि प्राप्त हो गई। परमधाम में अगर हम जाएंगे, शिव बाबा के साथ रहेंगे, वहां तो वो भी मौनी साधु है, हम भी मौनी साधु हैं, शिव बाबा के साथ बातचीत तो कोई होगी नहीं, वो भी बैठा हुआ है, हम भी बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या फायदा उसका? कुछ लेन नहीं, देन नहीं, कुछ आदान प्रदान नहीं, कुछ मेल मिलन नहीं। वहां पर तो जैसे निद्रा की अवस्था तमोगुणी होती है, वो एक प्रकार से और प्रकार की अवस्था है, लेकिन कोई एक्टिविटी तो है नहीं परलोक या परमधाम में। ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का ऐसा मिलन, आप सोचिए कि इतने वर्ष तक अंग संग रहे, तो वो नजदीक होने का ही जो प्रभाव पड़ता है, शिव बाबा जो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, जो पूर्ण प्रकाश रूप है, संपूर्ण है, परफेक्ट है, इस देह के लिमिटेशन से और अपने कर्मों और संस्कारों के लिमिटेशन से निकलकर, इस संसारिक झंझट और वातावरण से निकलकर, अव्यक्त लाइट का रूप धारण करके, शरीर धारण करके, उस शिव बाबा के साथ जो रहेगा, उसको शिव बाबा का भी जो सकाश मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, लाइट मिलेगी, माइट मिलेगी, शिव बाबा क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, बातचीत होती होगी, देखते होंगे, मिलते होंगे, ये कम बात है? तो वो ब्रह्मा बाबा तो यही कहते हैं, ये तो किसी काम का नहीं, ये तो गांव का छोड़ा था, ये तो बाबा, हमेशा आपने देखा होगा, हमने बाबा को कहा कि आपकी जीवन कहानी लिखने के लिए लोग कहते हैं, क्योंकि कुछ एक हंगामा हुआ, लोगों ने ब्रह्मा बाबा के बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि इनकी साइकिल की दुकान थी, ब्रह्मा बाबा की साइकिल की दुकान थी। ये आर्य समाजों ने एक किताब छापी कि ब्रह्मा बाबा जिसको ये कहते हैं दादा लेखराज, और साइकिल की भी कोई नए साइकिलों की नहीं, साइकिल रिपेयर की, पंक्चर लगाने की। आप बताइए, होता ना साइकिल को पंक्चर लगाया जाता है, किसी का पहिया टेढ़ा हो जाए सीधा कर दिया जाता है, बाहर एक वो ट्यूब लटका के रख देते हैं, या भाई ये साइकिल वाले की दुकान है। तो ब्रह्मा बाबा जिसको ये कहते हैं, उनकी एक साइकिल की दुकान थी, और बहुत सी फालतू बातें लिखी हुई, इसमें मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो बहुत मुखालफत की लोगों ने, आप तो कुछ और कहते हैं, लोग कुछ और कहते हैं, और आर्य समाज इतनी बड़ी संस्था है, उनके प्रमुख लोग और विशेष विशेष लोग अगर ये ऐसा कहें, हम लोग तो छोटे छोटे, हमारा कोई मान मर्तबा तो है नहीं, कोई पोजीशन तो है नहीं, उनमें से कोई एमपी, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई पढ़ा लिखा, कोई पंडित, कोई विद्वान अगर ये बातें कहे तो छोटे मुंह बड़ी बात हमारी कौन सुनेगा। तो लोग कहते थे आप तो कुछ गलत बात बताते हैं, जो दादा लेखराज हैं उनके बारे में तो ये आर्य समाज ने ये लिखा हुआ है। हम कहते थे ये गलत है, तो वो कहते थे अच्छा अगर ये गलत है तो ठीक क्या है, वो बताओ आप, ठीक भी तो बताओ। हम उनको बताते थे, कहते थे फिर आप ये प्रिंट क्यों नहीं कराते, जैसे उन्होंने छपवाया हुआ है आप भी छपवाओ, जिसका कोई दूसरा विचार होगा वो बताएगा, सामने आएगा आपके। तो हमने बाबा को कहा कि ऐसे कहते हैं लोग और हम सोचते हैं कि जीवन कहानियां लिखें आपकी ताकि सेवा हो जाए। तो बाबा ने कहा कि इसकी जीवन कहानी लिखने से क्या फायदा, बच्चे ये तो किसी काम का नहीं है, इससे आपको क्या प्राप्ति होगी, इसके जीवन कहानी की बात नहीं, शिव बाबा की महिमा लिखो, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिव कौन है, इसको दुनिया भूली हुई है, मेरे बारे में जान भी गए तो उसका क्या फायदा होने वाला है। तो हमने देखा कि बाबा ने हमें डिस्करेज किया। तो जब बहुत हमने उन्होंने विनय किया, अनुरोध किया कि बाबा इसमें बहुत सेवा है, आप देखिए हमें ये इजाजत दीजिए, आप जो बात कहते हैं वो ठीक है, उसका भी कारण हम समझते हैं आप क्यों ऐसा कह रहे हैं और आप भी समझते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं, तो अब हमको थोड़ी सी इजाजत दीजिए कि हम ये इसके विषय में कुछ छापें। तो ये जो जीवन कहानी की किताब है ये तो बाद में छापी गई थी, तो जब बाबा साकार में थे एक छोटी सी पुस्तिका, क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम तो लंबा चौड़ा ग्रंथ लिख दोगे अगर हम तुम्हें बताएं तो, हमने कहा नहीं बाबा लंबा चौड़ा ग्रंथ नहीं लिखेंगे। बाबा ने कहा हर एक धर्म वालों ने बढ़ा चढ़ा के लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं अपने धर्म पिताओं के बारे में, तुम भी वही काम करोगे। तो मैंने कहा नहीं वही काम नहीं करूंगा, जो आप कहेंगे आपसे पास करा के छपवाऊंगा। तब कहीं मुश्किल से जाके थोड़ा बाबा से जो हमें पता था हमने लिख के बाबा को दिखाया, वेरीफाई कराया और छपाया। वो किताब छोटी सी थी, कोई 36 या 48 पेज की थी, ताकि कुछ तो लोगों को दे सकें कि क्या बात है वो, नहीं तो कुछ और कहते थे। तो ब्रह्मा बाबा तो अपने को छिपाते थे, गाड़ी में आते थे और हम लोग भाई बहन इकट्ठे होते थे, कोई माला लेके आता था तो बाबा कहते थे मुझे क्यों माला पहनाते हो, मैं तो सेवक हूं, सेवक को मालिक लोग, तुम मालिक हो, बच्चे मालिक हैं बाप की प्रॉपर्टी के, बाप तो सेवक होता है, वो तो कमाता है, किसके लिए कमाता है, किसी पिता से पूछो कहेगा जी मैं बच्चेदार हूं, बच्चे हैं मेरे उनके लिए कमाता हूं, सुबह से शाम काम करना पड़ता है क्योंकि घर संभालना है मुझे, कहते हैं ना लोग ऐसे, तो मैं तो प्रॉपर्टी देने के लिए आया हूं और आप बच्चे मालिक हैं, मैं तो सेवक हूं, यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं ना बाबा मुरली में, तो मुझे माला नहीं पहनाओ, ये माला पहनाया जाता है जो संपूर्ण पवित्र हो, एकदम जिसकी स्थिति देवी देवताओं को पहनाया जाता है, मैं कोई देवी देवता थोड़ी हूं। तो वो भी बाबा मुश्किल से इजाजत नहीं देते थे, कोई आपको पता है ऐसी बहुत सारी बातें थी, छिपाते हैं बाबा। लेकिन आप लोग अब तो समझ गए होंगे कि ब्रह्मा बाबा क्या है, अगर ये मालूम नहीं है तो आपको ब्रह्मा कुमारी कहलाने का कुछ वो नशा भी आएगा नहीं, वो खुमारी नहीं चढ़ेगी कि किसकी बच्ची है आप। अगर आपको ये मालूम होगा जो शिव बाबा के अंग संग रहते हैं और जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, थोड़े से समय में इतना पद प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा वंदे जगत गुरुम शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये जगत गुरु तो बाद में हुए जब शंकराचार्य ने आके अब शंकराचार्य को उपाधि मिली, उससे पहले तो सब शास्त्रों में यही लिखा हुआ है ब्रह्मा वंदे जगत गुरुम, सारे जगत को ज्ञान तो ब्रह्मा से मिलता है, चाहे वो अभी अव्यक्त रूप में मिले चाहे वो साकार रूप में मिले, तो सारे जगत का गुरु को है मनुष्य, सारे जगत का जो वंदनीय है गुरु है वो सदगुरु है, शिव बाबा है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा है। अच्छा शिव बाबा नंबर वन है, ब्रह्मा भी उसकी बात सुनते 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 सुनते, आखिर बाबा कई दफा ये भी कह देते थे कि कई लोग समझते हैं ब्रह्मा बाबा तो भुट्टू है, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाता है, ब्रह्मा बाबा तो भुट्टू है, बच्चे अच्छा मैं भुट्टू भी हूं तो भी शिव बाबा की बात सुनते सुनते जब तुम समझ रहे हो तो क्या मैं नहीं समझ गया, ये भी बाबा कहते थे। जिन्हें हिंदी और संस्कृत भाषा का ज्ञान है वो ये जानते होंगे कि ब्रह्मा बाबा के बहुत से पर्यायवाची नाम हैं, शब्द हैं। ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहा जाता है, बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है, सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा बाबा है। अनेक उपाधियां अनेक नाम ब्रह्मा को दिए जाते हैं, तो जो सृष्टि का रचयिता है, जो भाग्य की रेखा लिखता है हर एक की, लोग कई दफा कहते हैं अरे भाई मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, जिसने पैदा किया संसार को उसने मेरी हस्तरेखा ही ऐसी बना दी, मैं क्या करूं, मेरे मस्तक पर ही उसने लिख दिया, अब मैं मिटाऊं कैसे उसको। तो ब्रह्मा के लिए हमेशा कहते हैं, तो वो ब्रह्मा बाबा कोई कम है जिसके लिए कहा जाता है भाग्य विधाता है वो? अगर आप ब्रह्मा बाबा के निकट हैं, आपने उनके मन को जीत लिया है, उनके दिल रूपी तख्त पर आप बैठ गए हैं, ब्रह्मा बाबा को आप प्यारे लगते हैं, आपका बेड़ा पार है, आपकी किस्मत बनी बनाई है, कोई भी आपको हिला नहीं सकता, अंगुली भी लगा नहीं सकता, हाथ उठा नहीं सकता, ये कोई कम बात नहीं है। ब्रह्मा बाबा कौन है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ये मत समझिए कि भाई वो भी दो हाथ दो पांव दो कान वाले व्यक्ति हैं, हमारी तरह से एक मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य में भी अंतर है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, बहुत फर्क होता है। तो ब्रह्मा बाबा कहां और दूसरे आज के मनुष्य कहां, कोई अंतर भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर उस ब्रह्मा बाबा के दिल पर आप नहीं चढ़े, उसके नजदीक आप नहीं आए, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं कभी आपके मन में ऐसा गर्व नहीं हुआ, वो कहते ना गर्व से बोलो हम भारतवासी हैं, हम भारत देश के वासी हैं, बहुत से लोगों को भारत का ही नहीं महत्व मालूम, बाबा कहते थे कि भारत की महिमा करो, ये भारत कौन सा डावे, सिंधी में बाबा कहते थे, भारत देश जिसका नाम है ये कोई छोटी बात नहीं है, जहां भगवान का अवतरण हुआ, जहां ब्रह्मा हुए, जहां सरस्वती हुई, जहां लक्ष्मी नारायण हुए, ऐसे गिनते जाइए वर्णन करते जाइए, है कोई ऐसा देश संसार में जहां भारत पर ऐसे कुछ जैसे कर्तव्य हुए हों। तो जैसे भारत की बात है, उससे अधिक महत्वपूर्ण बात ब्रह्मा की है कि ब्रह्मा कौन है। जब आपको ये याद रहेगा कि उसने मुझे कुमारी के नाम से एक्सेप्ट किया है, मैं उसकी कुमारी हूं, तो तब से आपके संस्कार इतने जल्दी तेज रफ्तारी से बदलेंगे कि बात मत पूछिए, आपके मन में एक खुमारी होगी, खुशी होगी। ब्रह्मा कुमारी तो आप हैं, ब्रह्मा खुमारी और हो जाएगी, कुमारी के साथ खुमारी भी हो जाएगी, खुमारी समझते हैं ना, नशा जिसको कहा जाए, वो थोड़ा सा रहेगा कि भाई मैं ब्रह्मा जो इतने बड़े महान हैं उसकी मैं संतान हूं, उसकी मैं कुमारी हूं। तो वर्षा शिव बाबा से भी लेना है, वर्षा ब्रह्मा बाबा से भी लेना है, और वर्षा पिता के रूप से भी लेना है, शिक्षक के रूप से भी लेना है, सदगुरु के रूप से भी लेना है। अब आप ये सोचिए कि पिता के रूप से वर्षा कैसे मिलता है, शिक्षक के रूप से कैसे, और सदगुरु के रूप से कैसे। पूरा वर्षा जब आप लेने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर से टीचर है, आप ये देखिए टीचर से पूरा वर्षा कौन लेता है। पहली बात यह है कि जो रोज क्लास में जाता है, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट रहता है, टीचर से देर से क्लास में आता है, हैं? और जो होम टास्क उसको मिलता है, होमवर्क कि ये घर से काम करके लाना, कल दिखाना मुझे, होमवर्क जो नहीं करता है, जो रिवाइज नहीं करता है, जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, जो परीक्षा में फेल होता है, क्या वो शिक्षक का वर्षा ले सकता है? तो शिक्षक का वर्षा कौन ले सकता है? जो पहले रेगुलर हो अटेंडेंस में, अटेंशन हो पूरी स्टूडेंट लाइफ पर, मैं स्टूडेंट हूं। और सबसे पहली बात तो ये टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जो शिक्षक और शिक्षार्थी जो विद्यार्थी है उसका संबंध कैसा होना चाहिए। जब क्लास में वो बैठता है, ये जो अदब है, आप देखिए कई लोग बैठते हैं बाबा के सामने, बैठते हैं बाबा के चित्र के सामने, या शिव बाबा आए हुए होते हैं उनके सामने, ऐसे टांगे करके बैठ जाते हैं। देखिए ये विदेश की कुछ बातें हैं, बूट पहन के चप्पल पहन के और इस तरह से बैठ जाते हैं सामने पांव करके। अब हम बाप के बच्चे हैं, बच्चे अगर बाप के सामने कैसे भी बैठ जाते हैं तो बाप परवाह नहीं करता, वो समझता है बच्चा है, इसको जैसे सहूलियत है बैठने में, कोई बात नहीं बैठ जाओ। अगर उसकी टांगों में कोई तकलीफ है और वो टांगे फैलाने में संकोच करता है तो बाप ही उसको कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कर दो। वो तो उसको कंधे पर भी चढ़ा देता है, सिर पर भी चढ़ा देता है। लेकिन टीचर, व्हेन यू आर ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का आजकल देखिए किस तरह से स्ट्राइक होती है और टीचर के बारे में कितने नारे लगाते हैं, क्या कुछ कहते हैं लोग। आपको कैसा लगता है, दुनिया को कैसा लगता है, टीचर्स को कैसा लगता है, सब लोगों को कैसा लगता है कि ये स्टूडेंट का लक्षण नहीं है, ये कोई पढ़ाई का तरीका है। उनकी बुद्धि में वो विद्या जो आती है वो विध्वंसकारी विद्या है, विनाश की तरफ ले जा रही है सारी। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनमें से कई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और वो पढ़ाई में होशियार भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कई दफा वो जो शरारती लड़के होते हैं वो पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, फटाफट उनको याद होता है और इम्तिहान में बड़े अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन जो काम वो करते हैं दुनिया का नुकसान ही होता है, हैं? वो तो मुसीबत हुसैन है, मुसीबत हुसैन पूरे पैदा हुए। हमने बताया ना, एक दफा पहले ही बताया था कि किसी को बेटा पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ उसको कभी बिजनेस में लॉस, कभी मकान की छत टूट गई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। तो बेटे का नाम क्या रखूं, उन्होंने पूछा, कहता है इसका नाम रख दो मुसीबत हुसैन, क्योंकि जब से ये पैदा हुआ है मुसीबत ही मुसीबत है मेरे ऊपर। तो जो ऐसा विद्यार्थी है तो वो तो मुसीबत हुसैन है। टीचर कहेगा ये कब खत्म हो और ये जाए जो शरारत करता है, आपको मालूम है। तो टीचर का, टीचर के प्रति स्टूडेंट का रिगार्ड कितना होना चाहिए। अगर वो रिगार्ड नहीं, मन में भावना नहीं, सम्मान की भावना नहीं, टीचर हमारे लिए वंदनीय है, हम उसको नमस्कार करते हैं, नमो नमः। हमारे लिए जो टीचर के प्रति इतना अदब नहीं रखता, विद्या कैसे उसको प्राप्त होगी। विद्या के लिए तो कहा गया है भाई जो विनय जिसमें हो उसको ही विद्या प्राप्त होती है। तो विनय ही ना हो, नम्रता ही ना हो उस टीचर के प्रति, टीचर डांट देता है, कुछ कह देता है तो उसमें अपना फायदा भला समझ करके, इसके हमें पढ़ाने वाला है, ये हमें क्या करने वाला है। वो कहते हैं ना, ये ईशाम न विद्या न तपो न दानम, इस तरह से बताते हैं। तो जिसमें कुछ भी ना हो, ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मानुष रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो पशु की तरह से है मनुष्य जिसमें ये चीजें नहीं है। तो वो हमें जो सिखाता है वो तो हमें पशु से मनुष्य बनाता है एक प्रकार से, तभी तो मनुष्यता आती है उसमें। तो ये अगर हमारा भाव नहीं है कि हमारा टीचर है, इसके प्रति हमारा रिगार्ड क्या होना चाहिए, तो कैसे हम वर्षा धारण करेंगे। पहले पहले टीचर से वर्षा रेलने का लक्षण है रिगार्ड, फर्स्ट उसके प्रति सम्मान, सम्मान आदर भाव, उसके प्रति नम्रता, उदंडता नहीं। और जो कुछ वो कहता है ये मेरे फायदे के लिए कहता है, मुझे सीखना है, मैं स्टूडेंट हूं, ये टीचर है, ये मुझे सिखाने वाला है, सिखाएगा मुझे, जो भी कहता है ये उससे मुझे शिक्षा लेनी चाहिए और मैं विद्या प्राप्त करने वाला हूं, ये विद्या देने वाला है। तो मैं विद्या द्रविणम, तो वो विद्या देने वाला जो हमारा शिक्षक है उसके प्रति हमारे ये भाव होनी चाहिए। दूसरा रेगुलरिटी, कभी भी क्लास को मिस नहीं करना, मुरली को मिस नहीं करना, नॉट ए सिंगल डे इन आवर लाइफ। जीवन में वो कौन सा दिन था, कभी भी ऐसा दिन नहीं था जब हमने पढ़ा नहीं पूरी तरह से। और फिर पढ़ने का मतलब यह है कि जो उसने उसमें कहा उसका पालन नहीं किया, उस पर हम चले नहीं, क्योंकि पढ़ाई एक तो होती है थ्योरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल्स। तो थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी वो जो हमें पढ़ाता है, जैसे मान लो वो कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है जी, वो बताते हैं ना युधिष्ठिर को भी, पांडवों को कहा कि भाई सत्य बोलो, तो फिर दूसरे दिन पूछा, हाँ बच्चों ये आपको याद हो गया, पाठ पढ़ लिया आपने, सबने बोला हाँ पढ़ लिया। युधिष्ठिर से पूछा, उसने कहा अभी नहीं मुझे पढ़ा, अभी नहीं मेरी बुद्धि में पूरा धारण नहीं हुआ। तो सब लोग हंसने लगे, ये बड़ा भाई है हमारा और ये कहता है ये सत्य बोलो, इतना सा भी इसको नहीं समझ में आया। लेकिन सत्य बोलो कह देना तो आसान है, और कैसी भी परिस्थिति हो उसमें से सत्य बोलो ये कितना कठिन है। वो बताते हैं भाई चार व्यक्ति अपने एक शहर से दूसरे कहीं गए देश में कुछ बिजनेस करने के लिए, उनके साथ एक छोटा बच्चा था। तो वो माँ ने उसको कहा कि तू भी इनके साथ जा, थोड़ा बहुत सौदा तू भी करना सीख, कुछ कमाई करके ले आ। पिता उसके थे नहीं, उनके साथ उसको भेज दिया, कुछ पैसे उसको बांध दिए यहाँ पर अपने उसके, तो ले गया वो। तो रास्ते में मिले डाकू, डाकू मिले तो उन्होंने सबको लूट लिया। कहा उन्होंने छिपाए हुए थे पैसे, किसी ने अंदर पॉकेट में, किसी ने धोती में बांधे हुए थे, जिसको जहां लगा छिपा के रखे हुए थे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने पूछ पूछ के निकालवाए सबसे, तो ले लिए। तो बच्चा बोलता है पैसे तो मेरे पास भी हैं, हालांकि वो डाकू है पैसे ले रहा है, कहता है पैसे तो मेरे पास भी हैं। उन्होंने उनसे पूछा तुम्हारे पास भी हैं, कहते हैं हाँ मेरे पास भी पैसे हैं। तो उसने कहा कि तुमने ये सच क्यों बोला, ये लोग जो हैं ये तो नहीं बोल रहे थे तुम्हारे पैसे, तुम्हें पता है मैं डाकू, हम डाकू लोग हैं, तुम अगर हम तो तुम्हें छोड़ रहे थे, ये बच्चा है इसके पास क्या होगा, तुमने खामखा हमको बताया डाकुओं को, तो तुम्हें ये मालूम नहीं, कहता मालूम है तुम डाकू हो और तुमने मेरे सामने ही तो लिए हैं उनसे ये पैसे, लेकिन तुमने पूछा है तो मुझे सच तो बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा सब जगह थोड़ी सच बोलना पड़ता है डाकुओं के सामने, जब वो पैसे ले रहे हैं तुम अपने पैसे कमाते हो। कहता है माँ ने मेरे को जब भेजा था ये कहा था, देखो हमेशा सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना और सच्चा सौदा करके आना। तो मैं माँ की मानूंगा या तुम्हारी मानूंगा, माँ ने मुझे ये पक्का करके भेजा था कि सच बोलना। तो उन्होंने छोड़ दिया उसको, पैसे भी दे दिए और उसकी वजह से सबके पैसे लौटा दिए। कहता है ये बच्चा जिनके साथ है ये सत्यवादी, तुम भी अच्छे लोग ही होगे, माँ इसकी माँ ने अगर तुम्हारे हवाले किया है, तुम अच्छे लोग होगे, तभी इसकी माँ ने इस छोटे बच्चे को तुम्हारे साथ भेजा है, मालूम होता है तुम अच्छे लोग हो, तुम्हारे से पैसे लेना ठीक नहीं, तुम वापस ले जाओ। उस एक सत्यवादी की वजह से सब लोगों के पैसे डाकुओं ने लिए हुए, सब लूटे हुए वापस लौटा दिए। ऐसी चीज है सत्य, सत्यमेव जयते नानृतम। लेकिन हम जल्दी से घबरा जाते हैं कि झूठ से ही जय होगी और आदमी टल जाएगा, सत्य से नहीं। जब आगे पीछे हम यही कहते हैं, ये सारे लोग जो हैं पार्लियामेंट के, हमारा जो देश का सिंबल है उसके नीचे तो यही लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और बोलते कोई सत्य बोलता है उनमें से? सुबह से लेकर शाम तक 24 झूठ बोलते हैं, 24 घंटे में एक घंटे में एक झूठ तो एवरेज बोलते ही होंगे, 24 तो कम से कम बोलते होंगे, क्या फायदा होगा। तो जो शिक्षक से पूरा वर्षा वो स्टूडेंट लेगा जो रेगुलर होगा, और रेगुलर के साथ साथ जो वो पढ़ाई जाएगी उस पर पूरा अटेंशन देगा, ध्यान देगा, क्योंकि स्टूडेंट है वो। स्टूडेंट का नाम ही काम ही ये है कि शिक्षा को प्राप्त करना, शिक्षा अर्जन करना, अर्जित करना। फिर जो उसको मैंने कहा था होमवर्क मिलता है, होमवर्क करेगा, ये नहीं कहेगा आज मेरे घर में मेहमान आ गया था, मैं उसी काम में बिजी था, मैंने लेसन लिखा नहीं या रिवाइज किया नहीं या याद किया नहीं, टाइम मिला नहीं, नहीं, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। वो कहावत है संस्कृत में, विद्यार्थी नाम कुतो सुखम, सुखार्थी नाम कुतो विद्या। जो विद्यार्थी है वो अगर सुख से ऐश परस्ती से सोता रहे वो विद्यार्थी नहीं हो सकता, और जिसको आराम करना है तो वो विद्यार्थी नहीं हो सकता, ये समझ लो। पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ये विद्यार्थी जीवन जो होता है ये मेहनत का जीवन है, पढ़ाई का जीवन है, पढ़ाई पर अटेंशन देना पड़ता है। जो पूरा अटेंशन देंगे वही ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे, दूसरे नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम लोग सारे दिन में कितना पढ़ते हैं, आधा घंटा घंटा सुबह मुरली चली पढ़ लिया, बस पढ़ लिया। कभी किसी स्कूल और कॉलेज में इसको स्टूडेंट कहा जाता है जो एक घंटा पढ़ता हो? वो तो ग्रंथी हैं जो ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, या कोई रामायणी है रामायण पढ़ते हैं, या कोई गीता का पाठ करते हैं, आधा घंटा घंटा उनका नियम बना हुआ है, नेमीनाथ हैं वो करके खत्म हो जाता है। जो स्टूडेंट है कोई नोटबुक, कोई राइटिंग, कोई तैयारी, कोई ऐसे लिखना, कोई कई चीजें होती हैं जो भी उसको करना है, पूरी प्रेपरेशन करे, सुबह से लेकर कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, खाना खाना, ये करना वो करना, सब कुछ करना, पढ़ाई कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ ली सब, जो कल पढ़ी हुई थी वो आज पढ़ी हुई है, जो आज पढ़ी हुई है वही चलती रहेगी आगे। आज नया हमने क्या पढ़ा, आज का पाठ क्या है, वो हमने पढ़ा, उसको रिवाइज किया, उसका मनन किया, उसका नित्य ध्यासन किया, उस पर होमवर्क किया, सुबह से लेकर शाम तक जो हमें होमवर्क मिला वो हमने किया, बस सुन लिया ये वरदान आज का ये है, आज का स्लोगन ये है, नोट कर लिया कॉपी में, बस फिनिश हो गया, ओम शांति, कॉपी बंद हुई, ओम शांति। चलो जी, ये दिस इज नॉट स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ हो और ज्ञानमय जीवन हो, स्टूडेंट के जो सारा कमरा, अगर जहां कोई स्टूडेंट रहता हो किसी हॉस्टल में, उस कमरे का या जहां जिस कमरे में घर में वो रहता हो उसके उसे ही हम समझ जाएंगे कि यहां कोई पढ़ने वाला बच्चा रहता है। कहीं कॉपी है उसकी, किताब है, कोई बाल पेन पेन रखा हुआ है, और कोई नक्शा लगा हुआ है, कोई ग्लोब रखा हुआ है, या कोई इस तरह की चीज है, कोई ज्योमेट्री पढ़ता है तो उसका वो ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है। हमारी पढ़ाई, अगर हमारी हमारी पढ़ाई के क्या साधन है वही हमें नहीं मालूम, हमें पढ़ाई में क्या क्या चीज चाहिए वही नहीं है हमारे पास। हमारे पास अव्यक्त वाणियों की पुस्तकें नहीं है, बाबा की जीवन कहानी नहीं है, दिव्य गुणों की धारणा के बारे में नहीं है, मेलों के बारे में हमारे पास नहीं है। हमारा अपने जो विद्यार्थी जीवन की पुस्तकें हैं वही अगर हमारे अपने पास हमारे कमरे में नहीं है, हमारे बस्ते में नहीं है, है जी, क्या हमारा विद्यार्थी जीवन है? सर सारा जबानी जमा खर्च है और लिखा पढ़ी में कुछ नहीं है, सब जबानी जमा खर्च है सुबह से शाम तक, तो ये कोई विद्यार्थी जीवन नहीं है। कहीं आपने अंडरलाइन किया हुआ है, कहीं कोई निशान लगाया है, कोई नोट किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बुद्धि में बिठाया है ठीक तरह से, तो ये इस तरह से पढ़ना। पहली चीज जो मैंने कहा भाई, रोज प्रतिदिन पढ़ना, रेगुलरिटी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई रेगुलर आने वाला स्टूडेंट फेल होता है तो ये जिम्मेवारी टीचर की होती है। चाहे डल से डल स्टूडेंट हो, अगर वो फेल होता है लेकिन आता है क्लास में रोज, तो उस टीचर से पूछा जाता है कि ये स्टूडेंट कैसे फेल हो गया, इसकी रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में तो रोज की हाजिरी है, फिर ये फेल कैसे हुआ? अगर वो कहे जी ये डल है, इसकी बुद्धि नहीं है, बेअकल है, बेअकल है तो उसके साथ टाइम लगा के उसको उस तरीके से सिखाओ। तो आप देखिए कि हमको बाबा रोज वही की वही बात जो लोग कहते हैं ना रिपीट करता है, उस तरीके से बाबा बताते, बार बार रिवाइज कराते हैं, बार बार रिपीट कराते हैं, याद करो, जैसे दो दोने चार, दो तीन छह, ऐसे नहीं वो बच्चों को पढ़ाते हैं बार बार जब तक उनको कंठ हो जाए, याद हो जाए, ऐसे ही बाबा हमको रिवाइज कराता है। क्या हम कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन इस नई पढ़ाई के हिसाब से तो छोटे बच्चे ही हैं, इसको कहां अभी हमने पूरा धारण किया है। तो इसमें रेगुलरिटी जरूरी है और ओबीडियंस जरूरी है। ओबीडियंट नहीं अगर हम होंगे टीचर के तो भी हमारा वो पूरी तरह से, यानी जिसको आज्ञाकारी या फर्माबरदार जिसको कहा जाए, पूरा अगर हम फॉलो नहीं करते तो फिर हमको टीचर से पूरा वर्षा मिलेगा नहीं। अब टीचर कहता है बोर्ड पर लिखकर दिखाता है ऐसा लिखो, जो फॉलो करता है उसका हैंडराइटिंग अच्छा होता है, जो नहीं फॉलो करता वो मालूम ही नहीं ये तमिल लिख रहा है या पंजाबी लिख रहा है या हिंदी लिख रहा है, उसके सारे ही जलेबी अक्षर मालूम पड़ते हैं, कोई ये नहीं पता लगता ये किस भाषा का अक्षर इसने लिखा है, ये अरबी भाषा का है या यूनानी भाषा का है या मुल्तानी भाषा का है, कहाँ का है कोई पता नहीं। तो वो जो टीचर जिस तरह से दिखाता है बताता है उसको वैसे करना, चलना उस तरीके से, ये जरूरी है। तो ये टीचर से वर्षा लेने की ये बात है। फिर सदगुरु से वर्षा कैसे मिलेगा उसको भी पूरी तरह से समझने की जरूरत है। सदगुरु से वर्षा कैसे मिलेगा? सदगुरु से वर्षा लेने के लिए पहली पहली बात यह है पूर्ण पवित्रता। पूर्ण पवित्रता, रूहानियत, क्योंकि गुरु रूहानी शब्द है। टीचर और गुरु में हम फर्क कर रहे हैं। आमतौर से विद्यालयों में टीचर को गुरु भी कहते हैं कई लोग, हिंदी में या संस्कृत में, ये हमारे गुरु जी हैं, मतलब ये क्या है, हमारे टीचर हैं। लेकिन हमने टीचर और गुरु सदगुरु को अलग किया है। तो ये सदगुरु के साथ हमारा जो नाता है वो एक डिसिप्लिनरी नाता है, अनुशासन। इसमें सबसे पहले हमारा अनुशासन जो है आध्यात्मिक अनुशासन, इंद्रिय निग्रह जिसको कहा जाता है, इंद्रियों पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। वो उपनिषदों में एक कहानी आती है कि भाई बहुत जोर की बारिश हुई और गुरु को एक शिष्य प्रिय था, उसने कहा फलाने तुम जाओ, बारिश बहुत तेज आ रही है और वहां से पानी आ रहा होगा, खेत में अंदर जा रहा होगा, सारी खेती नष्ट हो गई होगी। देखो वहां से जो मेड़ बनाई हुई है मिट्टी से, कहीं टूट तो नहीं गई? अगर वो कहीं से टूट गई होगी तो बारिश खेत में आ जाएगी पानी और सारी खेती खराब हो जाएगी। जाओ बच्चे, जाओ बेटा। इसलिए गुरु को भी बाबा कहते हैं लोग, मालूम है ना आपको, जैसे नानक को बाबा नानक कहते हैं। और किसी भी धार्मिक आश्रम में आप जाइए, गुरु को लोग या महंत को या साधु को लोग क्या बोलते हैं? बाबा। वो भी बाबा कहते हैं उसको, तो बाबा क्यों कहते हैं? उससे भी वर्षा मिलता है। तो उसने उसको जाकर कहा कि जाके देखो, बस सर्दी पड़ रही थी, बहुत ठंडक थी, और वो भागता हुआ नींद छोड़कर गया बेचारा, उठकर गुरुजी ने आज्ञा दी है। और वहां देखा तो वो जो बांध था, बांध बांधा हुआ छोटा सा, वहां वो टूट गया था, मिट्टी तो थी, जोर से पानी आया, उसने मिट्टी धकेल दी और पानी आने लगा खेत में। अब मिट्टी तो ठहरती नहीं थी, रात का टाइम, अंधेरा, अब वो कहां से उसको रोके, सारा खेत खराब होने वाला था। वो खुद ही वहां लेट गया, ऐसे करके लेट गया, ये जो है इसको बांध बना दिया, बट ऐसे ऐसे नहीं लेटा, पीठ के बल नहीं लेटा, साइड के बल लेट गया, जिससे कि पानी उससे टकरा के वापस चला जाए। तो बेचारे ने सारा वहां लेट गया और पानी रोक लिया, खेती को बचा दिया। और ठंडा ठंडा पानी था, बारिश का जो था, क्योंकि मौसम बड़ी ठंडी थी, तो और जोर से पानी आ रहा था, सारी रात वो वहां पड़ा रहा, और पड़ा रहा तो ठंडा ही हो गया वो, उसको इतनी ठंड लग गई कि वो कॉन्शियस नहीं रहा पूरी तरह से, वापस नहीं लौटा। वापस नहीं लौटा तो सुबह जब हुई, गुरुजी ने और शिष्यों को कहा, अरे भाई वो कहाँ है, वो तो देखने में नहीं आ रहा, रात को हमने उसको भेजा था, जाके उसका पता करो वो कहाँ है। जाके देखा वो वहां लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, आधा चेतन आधा चेतनता उसमें है, चेतना है, और आधा जो है वो थोड़ा मंद पड़ गया है। तो उन्होंने उसको कहा, कहता है इसको रोको पहले, नहीं तो पानी चला जाएगा। अभी तक भी पानी आ रहा था, गुरुजी ने कहा था कि जाओ देखो, पानी नहीं आना चाहिए, तो मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक इसका कोई इंतजाम नहीं होगा, क्योंकि उनकी आज्ञा थी कि इसमें खेत में पानी नहीं आना चाहिए। तो इतने तक उसने गुरु की आज्ञा का पालन करने की कोशिश की कि जान चली जाए। वो कहते हैं ना, धर्त पढ़िए, धर्म न छोड़िए, बाबा का कहना है ना, धर्त पढ़िए, धर्म न छोड़िए, कि जो हम पृथ्वी पर हमें कोई मार के डाल दे धरती पर, लेकिन धर्म जो बाबा ने हमें आज्ञा की है कि इसका पालन करो, वो हमें पूरी तरह से करना चाहिए। तो ये सदगुरु जो जिसके साथ हमारा एक स्टूडेंट का, शिष्य का सदगुरु के नाते से नाता है, उसमें सबसे पहली चीज जो है फेथफुलनेस, फेथ, जो वो कहते हैं वो उसमें विश्वास। अगर हम कहें ये वो कहते हैं कि विनाश तो पता नहीं, ये भी 2000 साल में विनाश हो जाएगा, और हम कहते हैं 98 तो हो गया है, वो भी खत्म होने को आ रहा है, आधा तो खत्म हो गया है, और ये इतने सारे पीरियड में कैसे सतयुग आ जाएगा, अभी तो लोग तैयार ही नहीं, 9,16,108 बने ही नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो पहली पहली बात जो है श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास, फेथ, फेथफुलनेस। ये जो है जब तक वो नहीं होगी, गुरु उसको पूरा वर्षा देगा जो श्रद्धा को रखता होगा, भावना को रखता होगा, और जिसका फेथ होगा, विश्वास करता होगा, वो ये उसका टेस्ट है पहला। आप भी किसी को कोई चीज देंगे तो टेस्ट करेंगे। आप बाहर जा रहे हैं, किसी को कहते हैं ये मेरे देवर रख लो, या मेरे पैसे रख लेना, मैं आऊंगा वापस तब आके आपसे ले लूंगा, जरूर आपको विश्वास होगा कि ये व्यक्ति जो है ऑनेस्ट है। कैसे आपको मालूम है ऑनेस्ट है? या तो पहले आपने उसको आजमाया है, या लोगों ने आपको बताया है कि हमने ऐसा किया था, तो ये ऑनेस्ट आदमी है। आज्ञा जो है वो शिरोधार्य, सिर पर धारण करने जैसी, जिसको हम टाले नहीं। ये गुरु खास तौर से जो है ये तो काल है, ये तो धर्मराज है, ये तो स्वयं भगवान है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उसकी बताई हुई बात को टालना, ये तो इसमें हानि ही हानि है। जिसका नाम ही कल्याण है, कल्याणकारी है, शिव का मतलब ही कल्याणकारी, तो जो नाम ही जिसका गुण ही और कर्म भी और स्वभाव भी जो कल्याणकारी जिसका है, जो किसी के अकल्याण की बात सोचता ही नहीं कभी भी क्षण भर भी, तो वो कल्याणकारी की आज्ञा का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो क्या हमारा पूर्ण कल्याण होगा? अगर हमने 80 उसकी 100 में से 80 आज्ञाओं का पालन किया, 20 आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तो हमारा 80% कल्याण होगा, 20% नहीं होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो जो भी बात कहता है वो कल्याण ही के लिए कहता है, कल्याण के अलावा दूसरे कोई बात कहता ही नहीं कि जिसमें अकल्याण हो। मनुष्य तो कई दफा बात कोई कह देता है, एडवाइस कर देता है, राय दे देता है, बाद में कहता है मेरे से गलती हो गई थी, या बाद में जब हमें अनुभव होता है तो हम देखते हैं कि जो कुछ इसने कहा था वो ठीक नहीं बैठा। अपूर्ण है मनुष्य, तीनों कालों को जानता नहीं है, खुद वो जन्म मरण में आने वाला होने के कारण संस्कारों के अपने वशीभूत है, तो उसका ज्ञान कोई संपूर्ण तो है नहीं, सब विद्याओं का भंडार तो है नहीं, किसी एक विद्या का भी नहीं है, तो सब विद्याओं का भंडार होने की बात छोड़ दो, तो वो कैसे हमारा पूर्ण कल्याण कर सकेगा? तो ये जो सदगुरु है, ये नाम ही इसका जो है सिद्ध करता है, गुणवाचक नाम है। हम लोगों को यही बताते हैं कि ये जो नाम है ये देह के आधार पर नहीं है, ये गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है, उसका गुण और कर्तव्य और स्वभाववाचक है, ये तीनों को बताता है कि वो परमात्मा गुण भी, कर्तव्य भी और स्वभाव भी, कल्याण ही है, वो कल्याण स्वरूप ही है। एक होता है मीठा, एक होता है मिठास स्वरूप। जैसे मान लीजिए आपने केला खाया, मीठा है, खजूर खाई मीठी है, और कोई चीज आप खाते हैं ये मीठी है, खीर खाई आपने मीठी है, ये मीठे हैं। लेकिन मिश्री क्या है? मिश्री मिठास स्वरूप है, उसमें मिठास के अलावा और कुछ है ही नहीं। केला है, केले में तो मिठास भी है, कुछ और भी है ना, खाने को जो आप खाते हैं, लेकिन वो मिठास स्वरूप नहीं है। जो मिश्री है वो मिठास स्वरूप है, चीनी का ही दूसरा रूप है, मिठास ही पूर्ण रूप से, घनीभूत रूप से, सॉलिड रूप से मिठास है वो। उसकी चाशनी आप बना लीजिए, उसका शरबत बना लीजिए उसको घोल के, लेकिन वो है मीठा, मीठा ही मीठा, जिधर से खाओ, दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां से भी खाओगे, चीनी क्या है? मीठी है, मिठास स्वरूप है। तो परमात्मा भी कल्याण स्वरूप है, तीनों कालों में किसी भी क्षण मात्र में, चाहे गुण से, चाहे कर्म से, चाहे स्वभाव से, वो अकल्याण उसमें एक सुई की नोक के बराबर भी है नहीं, किसी का सोचता ही नहीं। जो उसको ना मानता हो, अपोज करता हो, गाली देता हो, भगवान का निंदा करता हो, विरोध करता हो, उसका भी वो कल्याण करता है, वो सबका कल्याण करता है, निंदक का भी कल्याण करता है, नास्तिक का भी कल्याण करता है। आपने देखा होगा कई लोग नहीं मानते भगवान को, बाबा कहता है बच्चे कहाँ जाएगा, ये भी आखिर हट्टी तो एक है, यही आएगा, इसको प्यार से चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, समझ जाएगा, सीख जाएगा, कल्याण तो इसका भी करना है। बाबा कहते हैं बाबा का बच्चा है, कल्याण इसका भी करना है, सबका करना है। तो वो कल्याण स्वरूप है, उस कल्याण स्वरूप की आज्ञा को जो नहीं मानता, उस जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं। अगर महामूर्ख देखना हो तो देख लो, वो कहते हैं दिल्ली का लाल किला देख लो, ताजमहल आगरा देख लो, वो नहीं, वो आगे दिखाते, वो एक लाल टेंट जैसा बना हुआ, वो क्या कहते हैं उसको, आगे जो ढकना लगा होता है, बाइस्कोप नहीं, दूसरा नाम उसका होता है, तो वो दिखाते हैं उसमें, ये देख लो वो देख लो, अखीर में क्या कहते हैं, बाबा कहते थे अखीर में कहते हैं उल्लू का पट्टा देख लो, उसमें उल्लू दिखाया होता है, वो हंसाने के लिए, मजाक करने के लिए कहते हैं उल्लू का पट्टा देख लो, वो भी दिखा लेते। तो बाबा उसकी जगह पर कहते थे कि जैसे वो कहते हैं उल्लू का पट्टा देख लो, तुम यहां महामूर्ख देख लो, अगर महामूर्ख देखना है वो भी यहां देख लो, और अगर समझदार से समझदार देखना है वो भी यहाँ देख। दुनिया में सारी वैरायटी आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मिलेगी, दूसरी किसी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, समझा। तो सबसे बड़ा महामूर्ख की कोई व्याख्या पूछे, परिभाषा पूछे, तो आप क्या कहोगे? जो परमात्मा की आज्ञा को ही नहीं मानता, जो पूर्ण कल्याणकारी है, और वो कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में तो लोग लेके कुछ देते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देता है, फीस लेता है, दवाई के पैसे लेता है, कोई टीचर आम आदमी हमको पढ़ाता है, गवर्नमेंट से उसको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, दोस्त हमको कुछ फायदा पहुंचाता है, वक्त आने पर हमसे कुछ उम्मीद रखता है कि ये भी हमें मदद करेगा वक्त पर। सब लोग एवज में कुछ ना कुछ चाहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं चाहता, और ये तो कहता है मैं तुझे देने ही आया हूं, मैं तो दाता हूं वर्षा। और जो हमें दाता है, देने आया है और इतना भरपूर देता है, अरे उसकी बात भी अगर हम नहीं मानते तो क्या कहेंगे कि उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। देखना हो तो वो देख लो। तो क्या होना चाहिए? सदगुरु का वर्षा किसको मिलेगा? जो फेथफुल हो, पूरा ओबीडियंट हो, फेथफुल हो। और फेथफुल के दो मतलब हमने बताए, फेथफुल के दो मतलब होते हैं। एक तो है जिसका फुल फेथ हो, जिसका भगवान में फुल फेथ हो, पूरा विश्वास हो, बाबा जो कहता है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना, वो ठीक है क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, उसके कहने में कोई राज हो सकता है, हमारे समझने में कोई कमी कसर हो सकती है, उसके बताने में कुछ भाव हमसे क्लियर ना हुआ वो हो सकता है, लेकिन वो सत्य स्वरूप है, उसका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, अटल है। तो इसलिए उसमें पूर्ण रूप से विश्वास रखना। और दूसरा फेथफुल उसको कहते हैं कि जो वफादार हो, जो साथ ना छोड़े। हमारा हमने हाथ उसके हाथ में दे दिया और प्रण कर दिया, वचन कर दिया, व्रत ले लिया, हमने कसम खा ली जिसको कहते हैं, मन में ठान लिया कि हम मर मिटेंगे लेकिन आपकी आज्ञा पर चल मिटेंगे, जो होगा वो हम करेंगे, कितने तूफान आएंगे, कितनी मुश्किलें आएंगी, कोई भी मुसीबत आएगी, हम अपने वचन पर पाबंद रहेंगे। कहते क्या है, जब वो समर्पण समारोह होता है स्टेज पर जाकर, जो समर्पित होने वाली ब्रह्मा कुमारी है, आप जहां बिठाएंगे, जहां उठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, इत्यादि इत्यादि पता नहीं कितनी सारी बातें कहती है, और जब उसकी ट्रांसफर करो तो कहते हैं सिर्फ मेरी ही ट्रांसफर करते हो, उसकी करो पहले, वो मेरे से पहले किया है, फिर मेरी ट्रांसफर करना, और वो वहां की वहां रही। जैसे बाबा कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, क्या कहता है, वहां 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 रोता है, वहां वहां करता है। तो बाबा कहते हैं वहां वहां क्यों करता है, क्योंकि कहता है जब पेट में था तो कहता था हे धर्मराज जी बाहर निकालो काल कोठरी से, फिर मैं ये पाप नहीं करूंगा, अब के निकाल दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब बाहर निकल आया तो धर्मराज को कहता है वहां 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 की वहां रही, जो मैंने अंदर में कहा था वो वहां की वहां रही, अब तो मैं बाहर आ गया, धर्मराज जी तुम भी ठगे गए, मेरे जैसे चलाक आदमी के आगे तुम्हारी भी अकल काम नहीं की। तो छोटा बच्चा धर्मराज को कहता है वहां वहां। और आप भी स्टेज पर जाकर कुछ और कहते हो, और जब दादी कहती है ट्रांसफर करने को, फिर कहते हो दादी जी वहां 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 वहां। वो तो समर्पण समारोह था, कोई मौका ही और था, और वो स्टेज ही और थी, जगह ही और थी, लोग ही और थे, वो वहां की वहां रही। अब आज की बात करो, है ना ऐसे। तो वो पूरी तरह से उसकी आज्ञा का पालन करना, ये एक खास बात है। फिर सदगुरु, गुरु क्या देता है? मंत्र देता है, गुरु मंत्र देता है। भारत में प्रसिद्ध है कि वो मंत्र देता है और विधि बताता है साधना की, कर्मों की गति बताता है। गुरु का जो कर्तव्य है, कौन से कर्म करो, कौन से ना करो, विधि और निषेध जिसको कहा जाता है। विधि माना कर्म करो कौन से, निषेध माने ना करो कौन से, क्या करो क्या ना करो, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, ये बताता है वो। और मंत्र देता है, तो बाबा हमको मंत्र क्या देता है? मन मना भाव का मंत्र देता है। लोग कहते हैं ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। सारा दिन भक्त लोग ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। क्या मतलब ओम नमो शिवाय? कि मैं शिव को नमस्कार करता हूं। शिव को नमस्कार, नमस्कार का क्या मतलब है? कि उसको मैं बड़ा मानता हूं, उसके आगे सिर झुकाता हूं। किस लिए झुकाते हो? सिर झुकाने की जरूरत क्या है? तुम अपना सिर ठीक रखो, क्या जरूरत है सिर झुकाने की? इसलिए कि वो वंदनीय है, परम पूजनीय है। क्या मतलब है वंदनीय और परम पूजनीय का? माननीय नहीं है, माननीय है। वंदनीय है, पूजनीय से ज्यादा जरूरी तो यह है कि वो माननीय है, उसकी बात मानने योग्य है, इसलिए वो वंदनीय पूजनीय है। तो ओम नमो शिवाय कहते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल में धारण करते हैं कि हम शिव के वचन को पूरे रूप से पालन करेंगे। ये वो मंत्र देता है कि मेरे वचन को पालन करो और मनमना भव, मज्यादि भव, माम एव नमस्कुरु, अहम तो आ सर्व पापे भ्या मोक्षिष्यामि मा शुच। तू चिंता मत कर, मैं तेरे सब पापों के जिम्मेवारी लेता हूं, उससे तुझे मुक्त कर दूंगा। लेकिन तू एक काम कर। क्या काम कर? मेरी याद में रह, बस। इससे ज्यादा और सस्ता सहज क्या हो सकता? कि इतना तो कर, इतना निखाद तो व्यक्ति को नहीं होना चाहिए जो खुद कुछ ना करे और कहे मुझे सब मिल जाए। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा, करते की विद्या है, करने से ही तो कुछ मिलेगा। और ये कोई कठिन तो है नहीं, सारा दिन मनुष्य याद तो करता है, कोई ना कोई बुद्धि में आता तो है, बुद्धि इधर उधर, मन इधर उधर जाता तो है, और उधर से मोड़कर सिर्फ शिव बाबा को लगाना है, इतना ही करना है। तो ये गुरु का मंत्र है। अब ये कितना टाइम हम करते हैं? वो गुरु जी कहते हैं तुम आज 200 मालाएं फेरो, या इतनी दफा मंत्र लिखो, ओम 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 ये लिखो। आपको मालूम होगा भक्ति मार्ग में ओम ओम या राम राम इत्यादि लिखकर छोटे छोटे कागजों पर, और उसको फिर आटे की गोलियों बनाकर हरिद्वार में जाके या किसी नदी में जाके मछलियों को डालते हैं। मालूम है, ये भक्ति का ये भी एक तरीका करते हैं। आज दिन भर में 1,00,000 दफा तुम ओम ओम लिखो, ये गुरु की तरफ से आज्ञा मिलती है, और मछलियों को डालो। वो मछली बिचारी इतना एक वो होम्योपैथी की गोली की तरह से वो छोटा सा आटा का खा जाएगी, चलो खत्म हुआ। लेकिन इस संसार रूपी नदी में या सागर में जो मनुष्य रूपी मछलियां हैं उनको ज्ञान डालो ये लिखकर। ये शुरू यहां से हुआ कि तुम इतनी दफा लोगों को कम से कम इतना तो समझाओ, इतने लोगों को तुम समझाओ। उन्होंने वो मछलियां जो हैं उनको देना शुरू कर दिया। अब उसमें ओम लिखा हुआ है या राम लिखा हुआ है, वो मछली क्या करेगी? हैं? एक तो पानी में बह जाएगा, मिट जाएगा, और अगर उसके पेट में भी जाएगा, पेट में दर्द होगा बिचारी के, और ना तो नदी में कोई केमिस्ट है ना डॉक्टर है, वो तो मर जाएगी बिचारी। लेकिन उसको ओम को उसमें डाल के धोखा देता है उसको, और आटे में लपेट के उसको डाल देता है, वो आटा खा जाती है जो भी है, तो उससे उसको क्या लाभ हुआ? भाव तो ये था। तो मनमना भाव, मनमना भाव, मनमना भाव जो बाबा ने हमको कहा हुआ है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। बच्चे निरंतर याद नहीं कर सकते, दिन में 8 घंटे याद करो। अच्छा 8 घंटे याद नहीं कर सकते, इतना याद करो। अच्छा इतना भी याद नहीं कर सकते, इतना तो करो। अच्छा इतना भी नहीं कर सकते, इतना तो करो। कितना बाबा ने कहा हुआ है? अरे इतना भी नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? फिर बाबा कहता है मैं धर्मराज को कहूंगा, हे धर्मराज जी इसकी खाल उतारो। अभी मैं बाप हूं, शिक्षक हूं, सदगुरु हूं, शिक्षा दे रहा हूं, वर्षा दे रहा हूं। नहीं मानोगे, बाद में धर्मराजपुरी में आओगे, फिर कोई रियायत नहीं होगी। अभी मैं रियायत करूंगा, मार्क्स भी दूंगा, ग्रेस मार्क्स भी दूंगा, मदद भी करूंगा, गाइडेंस भी दूंगा, कुछ कठिनाई आएगी उसमें सहयोग दूंगा। और अगर अभी नहीं मानोगे फिर मैं कहूंगा लगाओ हंटर इसको, या वो जो तेल उबल रहा है बड़े बड़े कढ़ाओं में डाल दो इसको, इसका भी आज जो है वो इसको वो कचरी की तरह से तल दो इसको भी पूरी तरह से, क्या नतीजा उसका होगा, कितनी सख्त सजाएं मिलेंगी। नहीं समझ में आता है, इतना समझाने के बाद, डराने के बाद, सारी बात बताने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो क्या उसका नतीजा होगा। इससे शायद तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या करो, और ये आजमा के देखो। आप बाबा कहते हैं ये योग प्रत्यक्ष फल देने वाला है। आप एक दिन भी अगर पूरी तरह से जो बाबा कहता है याद में रह के देखो, आपको कितनी खुशी, कितना आनंद मिलता है, कितना हल्कापन महसूस होता है, देह से न्यारापन कितना लगता है, योगी जीवन का लाइफ ही क्या है, आपको अनुभव होगा, प्रत्यक्ष फल मिल जाएगा, उसका उसी दिन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई एक महीना काम करो और महीने के अंत में तनख्वाह मिलेगी तुम्हें, सारा महीना बैठो और फिर उसके बाद किराया मिलेगा तुम्हें, एक महीना बैंक में पैसे जमा कराओ उसके बाद ब्याज मिलेगा, ऐसा नहीं। ये उसका उसी तत्क्षण प्रत्यक्ष फल तुम्हें मिलेगा, ये बाबा ने कहा हुआ है। तो सदगुरु से अगर वर्षा लेना है तो फेथफुल बनो, ओबीडियंट बनो, और जो गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र के अनुसार चलो। और क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य वो बताता है, क्या करो क्या ना करो, खाना क्या खाओ क्या ना खाओ, कौन सी चीज पढ़ो कौन सी चीज ना पढ़ो, क्या देखो क्या ना देखो। ये फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, मिसाल के तौर से कैसा संग करो कैसा संग ना करो, हैं? ये दिन भर की दिनचर्या कैसे रखो, ये सारी बातें बाबा ने हमें बताई हैं, क्या करो क्या ना करो। जड़मई झुंगमई ना करो, किसी की निंदा मत करो, चुगली मत करो, नेगेटिव थिंकिंग मत करो, एक कागज पर आप लिख लो क्या ना करो, ये बाबा ने कहा क्या, और क्या करो ये भी लिख लो। तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये गुरु की आज्ञा है। आपने बाबा की जीवन कहानी में ये मालूम किया होगा कि जब बाबा लौकिक जीवन में थे तो उनको गुरु ने तार भेजा कि फौरन आ जाओ, और उन दिनों उनका वो बच्चे का जन्मदिन था, और बाबा ने कहा कि पार्टी के लिए इनवाइट किया हुआ था लोगों को, सारा उसका इंतजाम किया हुआ, और उसका टेलीग्राम आ गया तुम इस तार को देखते ही फौरन चले आओ। तो उन्होंने जसोदा को, जसोदा मैया को, अपनी यानी युगल को कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, गुरु की तार है। तो उन्होंने कहा आप कैसे जाएंगे, सब लोगों को बुला के आप चले जाएंगे, क्या कहेंगे लोग, क्यों गए, ऐसी क्या बात थी। तो बाबा ने क्या कहा कि गुरु की आज्ञा काल की आज्ञा के बराबर है, उसको मैं नहीं टाल सकता। हालांकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, तो भगवान ने क्यों इस रथ को चुना, क्योंकि शुरू से ही उसमें कुछ ऐसे अभ्यास थे, ऐसे उसकी योग्यताएं थी, क्वालिटीज थी, जिसकी वजह से उस रथ को चुना। तो वो गुरु की आज्ञा को पूरा मानने वाले थे, तो बाबा भी उसको चुनेगा शिव बाबा जो पूरी आज्ञा को चलने वाला हो। अगर ब्रह्मा ही नहीं चलेगा पूरी आज्ञा पर, दूसरों को कैसे चलाएगा, उनको क्या बताएगा, तो ऐसे रथ को चुना। तो हम उसकी जो करना क्या है, नहीं करना क्या है, डू एंड डोंट, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, जो हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग है, फुल स्टॉप कहां लगाना है, क्वेश्चन कहां करना है, कामा कहां लगाना है, और शुरू कहां करना है, ये सारी ग्रामर हमें मालूम नहीं होगी, और कर्म विधान हमें मालूम नहीं होगा, कर्म के नियम, कर्म के दर्शन, कर्म की फिलॉसफी नहीं हमें मालूम होगी, तो कैसे हम चलेंगे। तो शिव बाबा जो सदगुरु हैं, ये चीज हमें कर्मों की गति बताते हैं, उस कर्मों की गति को बता के सदगति वो कराते हैं। दूसरी बात यह है, कई गुरु जो गुरु कहते हैं, सो कॉल्ड गुरुज, तथा कथित गुरु जिनको कहा जाए, वो तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। शिव बाबा जो हैं ज्ञान मार्ग के गुरु हैं, वो योग मार्ग के गुरु हैं। शिव बाबा जो हैं वो योग सिखाते हैं। तो शिव बाबा टीचर का कार्य है, ये सृष्टि क्या है, तीन लोग क्या हैं, ये कल्प कितने समय का है, इत्यादि इत्यादि बातें बताना, वो टीचर हो गया। और योग क्या है, योग की विधि क्या है, योगी के लक्षण क्या हैं, योग लगाना कैसे चाहिए, ये सदगुरु का कार्य है, ये योग गुरु सिखाता है। तो जो योग बाबा सिखाते हैं, उस योग को अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते, या उस योग की विधि पूरी तरह से नहीं सीखते, सिद्धि नहीं प्राप्त करते, तो हम में अच्छे शिष्य के लक्षण नहीं है। सदगुरु के साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए, सदगुरु के पास जाने की जरूरत ही इसलिए है, अगर किसी को कोई पढ़ाई पढ़नी है तो यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, टीचर के पास पढ़ ले। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा जो है वो पिता और टीचर के रूप में वर्षा ले ले। अगर सदगुरु के रूप में वर्षा लेना है तो एक तो कर्मों की श्रेष्ठता का और दूसरा योग की सिद्धि का, योग की परम सिद्धि का, जो योग में हमारी स्थिति हो जाए, मन हमारा एकाग्र हो जाए, वहां लग जाए, लगन में मगन हो जाए, हमारे कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो जाए, देह से न्यारापन हम में आ जाए, हमारे हर एक कर्म में अलौकिकता आ जाए, रूहानियत आ जाए, जीवन के प्रति जो हमारा वैराग्य भाव होना चाहिए वो वैराग्य भाव आ जाए, त्याग की भावना आ जाए, ये सदगुरु हमें सिखाता है। त्याग, वैराग्य, योग, कर्म की श्रेष्ठता, ये सब चीजें और मंत्र, ये सब जो शिक्षा देता है, ये डिपार्टमेंट सदगुरु के रूप से है, इस कारण से हम उसको सदगुरु कहते हैं। और वो जैसे गुरु यात्रा कराते हैं, वो यात्रा हमें बताता है, यज्ञ कराता है, जैसे गुरु यज्ञ कराते हैं वो यज्ञ कराता है। यज्ञ का क्या मतलब है? यज्ञ का क्या मतलब है? यज्ञ माना देना। जैसे मान लीजिए जो भी यज्ञ करते हैं, जो होम भी करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अग्नि जगाकर जो यज्ञ करते हैं, हर थोड़े समय के बाद जब वो आहुति डालते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? इदम अग्नाय इदम नमम, इदम अग्नाय इदम नमम। थोड़ी देर के बाद बोलेंगे ये अग्नि के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मैंने अग्नि को समर्पित किया। तो ये भगवान के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरा ये तन अब भगवान को समर्पित है, मेरा ये मन धन ये भगवान को समर्पित है। जैसे कपड़ा धोबी को दिया जाता है कि इसको धो डालो, जैसे भी चाहिए, जो भी इसको साबुन लगाना हो, कुछ भी डालना हो डिटर्जेंट, इसको स्वच्छ कर दो, भट्टी में डालकर या जैसे भी सोटा मारकर, जैसे भी चाहो इसको स्वच्छ बना दो। तो बाबा कहते हैं कि ये गुरु, ये जो है धोबी भी है बाबा, ये साफ करता है जन्म जन्मांतर के लिए, ये आत्मा के सारे मैल को धो डालता है। लेकिन अगर आप समर्पित ही नहीं होंगे, अपने आप को बाबा के हवाले करेंगे ही नहीं, धोबी को कपड़ा ही नहीं देंगे, वो भट्टी में डालेगा कैसे? आप भट्टी में बैठते हैं, मान लो यहां पर भट्टी में बैठते हैं, भट्टी में कैसे बैठते हैं? जैसे वो भट्टी होती है, देखा होगा आपने धोबी की भट्टी को, देखा है किसी ने? हैं? धोबी की भट्टी को नहीं देखा, फिर ये भट्टी कैसे करोगे तुम? पहले आओ दिल्ली में, जमुना जी के कंठे पर तुम्हें धोबी की भट्टी दिखाएं, फिर तुम्हें मालूम पड़े। बहुत बड़ा जो उसका देगचा होता है, उसमें पानी भर के या सोप सॉल्यूशन डालकर साबुन को घोल के, या जो पाउडर कोई अच्छा हो, जैसे कोई टिनोपाल डालता है, कोई सर्फ डालता है, कुछ भी है वो डाल के फिर कपड़ों को डालता है, फिर उसके ऊपर से उसको बंद कर देता है ताकि वो जो स्टीम बने वो बाहर ना निकले, और वो नीचे से जो अग्नि जगाता है ताकि वो पानी गर्म गर्म हो, उस गर्म पानी से मैल धुल जाए, और उसमें जो वो, क्योंकि पहले ये वॉशिंग मशीन तो होते नहीं थे ना, ये भट्टी होती थी, वॉशिंग मशीन नहीं थी। वॉशिंग मशीन में भी आपने देखा है सटका लटका तो लगता है, इसमें भी, तो वो उसमें उस तरह से होता है प्रोसेस, तो वो ऊपर से बंद होता है, तो आपको ऊपर से बंद तो कोई करता नहीं, भट्टी में तो डाल दिया, बंद तो करता कोई नहीं, करता है कोई बंद आपको? रतनमणि दादी ने आपकी भट्टी को बंद किया ऊपर से? किया? क्योंकि बाबा कहते थे कि अगर भट्टी में तुम्हें घर याद आया, अगर भट्टी में पुराना जीवन याद आया, अगर भट्टी में तुम्हारे पुराने संस्कार याद आए, फिर करो, ये भट्टी फेल होगी। तो मन जो है, संकल्प जो है हमारे, याद जो हमारी है, वो और कोई ना आए, बल्कि भट्टी में एक शिव बाबा ही याद आए, एक मैं, दूसरा वो, तीसरा ना कोई, तब होगी भट्टी, तब स्टीम पैदा होगी, और वो स्टीम हम पर असर करेगी। अगर सारी स्टीम ही निकल गई तो ठंडे कपड़े क्या धुलेंगे बताओ? अगर पानी ठंडा हो जाए तो फिर वो मैल कैसे निकलेगा उसमें से? उसमें गर्मी तो आनी चाहिए ना। तो इसलिए अगर किसी को भट्टी में आया था याद कोई इस किस्म की लौकिक बातें, कोई मित्र संबंधी दोस्त, पुराना जीवन, विद्यार्थी जीवन, घर की कोई बात या कोई पुराना संस्कार, या सेंटर की कोई जो रहती है सेंटर के साथ रहने वाली किसी बहन की बात, या इधर उधर की कोई बात अगर याद आई थी तो उसकी भट्टी ठीक नहीं हुई फिर करो तुम, और अगर नहीं आई थी फिर वो उसकी समझो भट्टी ठीक थोड़ी सी हुई। ये है उसमें एक जरूरी। तो शिव बाबा जो सदगुरु है, जो स्टूडेंट होता है वो तो पढ़ के चला जाता है, गुरुकुल से पढ़ के चला गया और यूनिवर्सिटी से स्कूल से पढ़ के घर चला गया, नौकरी करने लगा, बिजनेस करने लगा। लेकिन जो शिष्य है गुरु का, जो सन्यासी है, समर्पित जो है, जो गुरु से वर्षा लेना चाहता है, गद्दी लेना चाहता है, आश्रम का फिर बनना चाहता है मुख्य, या अपना जीवन में मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहता है, संसार के लफड़ों से उसको अलग होना पड़ता है और वो वहीं आश्रम में रहते हुए अपने को गुरु जी के समर्पित कर देता है। तो अगर वो आप कहते हैं कि शिव बाबा सदगुरु है तो अपने आप को उसके प्रति समर्पित करो, ये भाव। अगर समर्पित बुद्धि हम नहीं है, अगर हमारे मन में डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन नहीं है, बुद्धि हमारी पूरे रूप से हमने शिव बाबा के हाथ में दी नहीं है, पूर्ण रूप से हम ट्रस्टी नहीं है, तो फिर भी हमको सदगुरु से पूरा वर्षा मिलेगा नहीं। उसके प्रति समर्पित होंगे तब हम उस सदगुरु के बच्चे होंगे, जब पढ़ाई पढ़ेंगे तो टीचर के बच्चे होंगे, जब बाप का लालन पालन लेंगे तो ब्रह्मा बाबा के पिता के रूप से बच्चे होंगे, और जब सदगुरु से मंत्र लेकर उसके प्रति समर्पित होंगे श्रेष्ठ कर्म करते हुए ट्रस्टीपन से, तो फिर हम सदगुरु के भी बच्चे होंगे, फिर उससे भी वर्षे के अधिकारी होंगे। तीनों वर्षे जब हमें मिलेंगे तब हमको संपूर्ण वर्षा मिलेगा। अब इनमें से जो कोई भी काम अगर होगा तो पूरी प्राप्ति वर्षे की नहीं होगी। आगे समझ बात कि नहीं? ओम शांति।